ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जनजातीय लोग प्राकृतिक जीवन शैली से संचित ज्ञान का भंडार हैं। वे आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जनजातीय लोगों की जीवन शैली से सीख लेकर देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब विकास की प्रक्रिया में जनजातीय लोगों की सक्रिय भागीदारी हो। राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी परंपराओं और संस्कृति से समृद्ध है। आदिवासी समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते आए हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन IIR ऐप पर भी उपलब्ध होगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी युद्ध तथा इसके मानवीय पहलुओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में कल 7वीं भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओल्व शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार व्यापक शांति की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने खासकर विकासशील देशों में खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ संगठित प्रयास किए जाने की भी अपील की। संयुक्त वक्तव्य में पश्चिम एशिया में शांति तथा स्थिरता पर बल दिया गया और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फलस्तीनी हथियारबंद गुट हमास के आतंकी हमले की एक स्वर से निंदा की गई। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसराइल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान में कई स्थानों पर तेज विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार 1 अप्रैल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसराइल की सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो और हमले करके स्थिति को न बिगाड़े। झारखंड विधानसभा के 1 चरण के चुनाव के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए हैं। 1 चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इस बीच भाजपा ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को पार्टी की झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उधर कांग्रेस ने 23 और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट ने 15 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। ओडिशा के तटवर्ती जिलों में भीषण चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य और सेवाओं को बहाल करने का कार्य जोर शोर से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चक्रवात के कारण कई इलाकों में बिजली की लाइनें टूट गई थी। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए थे। मकानों तथा धान के खेतों में हजारों हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अब कमजोर होकर ओडिशा के उत्तरी भागों में कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान देंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।